समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, नमस्कार, अ हार्ट फेल्ट हेलो एंड गुड डे टू ऑल आवर लिसनर्स। वेल, यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा लिसनर्स ऑन 100.1 FM विद शगुन चोपड़ा एंड आकर्षिता टुडे। वेल लिसनर्स, एज ऑलवेज, फर्स्ट we'll provide all the news that is latest to you, and then our discussion segment Dateline India is to look forward to. We should look forward to it because it involves the discussion about a very potent topic today. I'll let you know in a moment, and we'll also give you the reports, capsules and our tributes at the ending of the program. All we want to say is that be with us till the roughly next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Union Minister Ashwini Vaishnav says India is rapidly laying its technological base to achieve the goal of Viksit Bharat, urges young professionals to design world-class technologies and products.
प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामलों में गूगल और मेटा को नोटिस जारी किया।
Israel and Syria agree to a ceasefire after Israeli attacks on Damascus.
मौसम विभाग ने आज केरल और पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की।
इंडिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू हैव 4 प्लेयर्स इन क्वार्टर फाइनल्स ऑफ वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप। Listeners, now, this is our discussion segment. It's named as Dateline India, and we will be taking a look at the developments taking place at national or global level. And today, as I told you in the beginning, we will talk about digital detox and also digital fatigue. Well, a very potent topic. Almost everything will work again if you unplug it for a few minutes, including you. These are the words of Anne Lemmet, and a very, I think, simplified idea put into words, right?
जी, प्रौद्योगिकी को अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए, ना कि आपका जीवन बन जाना चाहिए, ऐसा कहना है बिली कॉक्स का। और अगर हम डिजिटल डिटॉक्स की बात करें तो डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए डिजिटल उपकरणों जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप या सोशल मीडिया से दूरी बनाना, ताकि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके। वहीं डिजिटल थकान लगातार स्क्रीन के सामने रहने और सूचनाओं की अधिकता के कारण होने वाली थकान है, और ये थकान शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से महसूस हो सकती है। डिजिटल लत एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है, क्योंकि अत्यधिक स्क्रीन समय मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है, नींद के पैटर्न को बाधित करता है और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। बच्चे और किशोर अपनी विकासशील संज्ञात्मक क्षमताओं के साथ विशेष रूप से असुरक्षित हैं। इंटरैक्टिव सामग्री, सोशल मीडिया और गेमिंग के बढ़ते चलन ने इस लत को और बढ़ा दिया है, जिससे युवाओं में गंभीर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां पैदा हो रही हैं। और शगुन, अगर आज की बात करें हम, तो आज का टेक्नोलॉजी का दौर है, युग है, जहां पे हर चीज, अगर हमें कुछ खाना है, हमें कहीं जाना है, तो रैपिडो, ओला, उबर है, जोमैटो है, हर चीज हमें मोबाइल पर उपलब्ध है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हम पे बहुत ही ज्यादा बुरा इम्पैक्ट भी कर रहा है। इतनी ज्यादा स्क्रीन टाइम है, छोटे छोटे बच्चे पूरे दिन मोबाइल फोन्स पे, वो बिना फोन के खाना नहीं खाते हैं आजकल, उनकी जो मोबाइल से जुड़ी लतें हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हमारे उपयोग के लिए, हमारी हेल्प के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ही हमारा उपयोग कर रही है।
वेल, यस, राइटली सेड आकर्षिता,
दुरुपयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें बहुत नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। हमारी शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये हमें बहुत ही इम्पैक्ट कर रहा है।
राइटली सेड देयर आकर्षिता, योर पॉइंट, एक्चुअली इट इज, वी शुड स्ट्रेस ऑन इट अ लॉट, अ डिजिटल डिटॉक्स। वेल, Listeners, basically, it involves actively choosing to step away from your devices. As we said, as I explored the idea of unplugging your devices, the simplest of these things and steps can be taken. And you can simply, passively reduce the usage of your devices. Also, the goal, as you were also talking about that, the goal is to dedicate specific time in spending time like in nature, engaging in physical exercise, physical activities, also practicing mindfulness. Of course, we need mobile phones and our digital devices, but you have to mindfully practice the way you are going to increase or decrease your mobile screen time. Increase in the sense that if you have something important to do, you cannot step away from the devices, right? But you can manage your time and you can, of course, set specific times to spend in nature and you doing the physical exercises and all so that you can balance up the proportions.
And today, in our mobile phones, there is an app also, digital well-being.
Right. So you can keep a check on your screen time.
Digital well-being, you can put how many hours you want to give to this app.
Right.
And that is also good for your children because parental control is also there.
And there is a growing love for scrolling on phones, which is punishing us in several ways. Let us stress on that as well. Excessive screen exposure. Let's stress on this point first. It is reducing the children's ability to concentrate, also impacting their academic performance and their cognitive function. Well, prolonged screen use, especially before bedtime, everyone knows that, but I don't think so. Like, people are taking steps in order to prevent it. This actually disrupts melatonin production, leading to insomnia and fatigue.
अगर हम लंबे समय तक स्क्रीन पर काम कर रहे हैं तो उससे मोटापा, खराब मुद्रा और आंखों में तनाव बढ़ता है जिससे दृष्टि में गिरावट जैसी समस्याएं आती हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार महामारी के बाद अत्यधिक गैजेट उपयोग के कारण स्कूली बच्चों में निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं 15% बढ़ गया है और गैजेट के अत्यधिक उपयोग से बाहरी गतिविधियां कम हो जाती हैं पारस्परिक कौशल कमजोर हो जाते हैं और भावनात्मक नियंत्रण में कठिनाई होती है
In an era dominated by constant connectivity, more and more people are turning to digital detox, a break from screens and social media. With smartphone addiction at an all-time high and constant exposure to online content, people are embracing tech-free time to restore focus and well-being. Experts and studies indicate that the trend stems from digital fatigue, encouraging individuals to reconnect with family, pursue hobbies, and practice mindfulness. A study by the University of Pennsylvania has found that limiting social media to 30 minutes a day improved participants' well-being, reducing anxiety and depression while increasing life satisfaction. The government is stepping in with several initiatives to support digital well-being. The Pradhan Mantri Grameen Digital Saksharta Abhiyan PMG Disha strives to bridge the digital divide by promoting digital literacy and fostering responsible technology usage. Schools and universities have started implementing tech-free hours, encouraging students to embrace offline learning and mental wellness. Young professionals and students especially are embracing this trend. As mindfulness and mental well-being gain importance, people are recognizing their step away from digital distractions can enhance focus, boost creativity, and improve overall happiness. With Gaurav Kumar's report, this is Naresh Mago for Parikrama.
Well, our report actually discusses about these impacts in a lot of detail. Also, digital addiction, it contributes to, let's stress on these points now, anxiety, depression, and social isolation. And we were also talking about the cognitive function. Well, cognitive function, if let's explore that idea a bit, the perception. It involves the perception, the ability to interpret the sensory information from our environment. Also, our attention span, it is decreasing, right? And the digital addiction, it reduces real-world social interactions. As per National Institutes of Health, adolescents spending 5+ hours daily on screen were at a 70% higher risk of depression. That's a whopping number. We should decrease that. And now, it is actually the time to go for a digital detox. So make the effort, listeners, and take the initiative. And for listeners who are wondering what is digital detox initiative, well, listeners, it is an initiative that encourages people to cut back on using digital devices like our smartphones, computers, tablets, social media platforms, right? Through structured programs or campaigns. Well, yes, the social media platforms that we can stress on that. Social media platforms, if we click something, right? According to that, similar information it actually crops up, right?
उसी के हिसाब से क्या होता है कि जब भी हम कोई अपने आसपास कोई भी चीजें सर्च कर रहे होते हैं तो हम स्क्रॉलिंग टाइम हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और शायद इसीलिए जो है गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्कीम्स ला रही है जिससे हम डिजिटली प्रोटेक्ट हो सके और डिजिटली हमारा जो प्राइवेसी कंसर्न है उसको सुरक्षित किया जा सके. और अगर हम डिजिटल डिटॉक्स की बात करें तो इसका उद्देश्य जागरूकता को प्रोत्साहित करना, स्क्रीन टाइम को कम करना, डिजिटल लत से निपटना और तकनीक के साथ स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना है. इसमें अक्सर उपकरणों से दूरी बनाना, ऑफलाइन शौक जैसे कि अगर आपको डांस पसंद है, गाना गाना पसंद है या आप बाहर वॉक पे जा सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका ह्यूमन इंटरेक्शन थोड़ा ज्यादा हो.
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज कैन बी, यू कैन एंगेज योरसेल्फ्स इन दैट.
हाँ, और प्रकृति में समय बिताना, आमने सामने सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं. डिजिटल थकान को दूर करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स करना फायदेमंद साबित हो सकता है. इसके लिए आप कुछ देर के लिए स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं. इससे आपके दिमाग को थोड़ा रिलैक्स फील होता है और आपके मन को शांत करने में इससे मदद मिलती है. और आप चाहें तो कुछ माइंडफुल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे ब्रीथिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं. इससे भी आप थोड़ा सा, जैसे आप काम कर रहे हैं, आपका ऑफिस,
फॉर एग्जांपल मेडिटेशन,
10 से 12 घंटे आप काम कर रहे हैं तो बीच में आप 5 मिनट का समय निकाल करके थोड़ा सा माइंडफुलनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं.
वेल, इट इज द टाइम टू एक्चुअली रिक्लेम योर मी टाइम.
जी,
राइट.
और अच्छी नींद, ये बहुत जरूरी है आपके पूरे शरीर के लिए जरूरी होती है. और जब आप सोने से पहले कुछ एक आध घंटे पहले आप स्क्रोलिंग करते जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आपके 4-5 घंटे कैसे चले जाते हैं. और
वेल, द रीजन इज लाइक स्लीपलेसनेस. द रीजन बिहाइंड दैट इज द ब्लू लाइट विच इज एमिटेड फ्रॉम स्क्रीन्स. इट कैन इंटरफियर विद द स्लीप पैटर्न्स एंड डिस्कनेक्टिंग बिफोर बेड कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग स्लीप क्वालिटी.
क्योंकि आपके दिमाग को कहीं ना कहीं ये न्यूरॉन्स ये मैसेज पहुंचाते हैं कि अभी आप जग रहे हैं आप, और
इट्स टाइम टू कंटिन्यू द एक्टिविटी व्हिच यू आर परफॉर्मिंग एट दैट टाइम.
और हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के अनुसार खराब नींद स्ट्रेस को बढ़ाती है, इसलिए अच्छी नींद लेने की कोशिश करें.
यस, ऑल्सो यू मस्ट, यू कैन कीप फास्ट. These kind of fasts, they are different, listeners. Digital fasting on several occasions, it can help. And we are actually introducing you to digital fasting. It is a process of setting time periods in your whole day or your week, where you can plan your whole week according to that, where you are not using any form of technology, be it smartphones, laptops, tablets, nothing at that particular point of time, just you or the nature, wherever you're sitting in the park or in the garden or in your own balcony, wherever you are, just be with yourself, with your thoughts.
और शगुन, अगर हम अक्सर देखें जब हमारे कभी एग्जाम्स होते थे, कुछ परीक्षाएं चल रही होती थी, तो अक्सर हम क्या करते थे, दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि दूसरे कितना पढ़ रहे हैं, उनकी स्टोरीज देख करके डिजिटली. तो इस पे एक हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी एक स्टैंड रहा, परीक्षा पे चर्चा जो उन्होंने प्रोग्राम किया उसमें भी उन्होंने इस पे बात कही. कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार अपने परीक्षा पे चर्चा संबोधन में एक छात्र को जवाब देते हुए कहा था कि डिजिटल उपवास का अभ्यास करना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि गैजेट्स इंसानों से ज्यादा स्मार्ट नहीं होते.
Surely.
हमें लगता है कि सब कुछ टेक्नोलॉजी हमारे लिए सब कुछ आसान कर दिया चैट जीपीटी ने, बट द टाइप ऑफ कंटेंट वी आर राइटिंग, द टाइप ऑफ कंटेंट वी आर प्रेजेंटिंग,
द कंटेंट ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, यस राइट,
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस.
सो यू शुड ऑलवेज रिव्यू द इन्फॉर्मेशन एज आकर्षिता मीन्स टू से दैट टू यू लिसनर्स.
और उन्होंने ये भी कहा था कि हमें इसका विश्लेषण करने और ये समझने की जरूरत है कि अनावश्यक तनाव और अन्य हानिकारक दुष्प्रभावों से बचने के लिए लोगों के जीवन में डिजिटल उपवास बहुत जरूरी है. तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, तो हमको उनकी बात सुननी चाहिए और कहीं ना कहीं हमें डिजिटली डिटॉक्स की ओर बढ़ना चाहिए.
यस, इट एक्चुअली माइट अपीयर हार्ड एट फर्स्ट, बट वी नो यू एंड मी, वेल ऑल ऑफ अस, वी कैन डू इट. सेट असाइड अ टाइम ड्यूरिंग द डे और वीक व्हेन यू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. दिस इज डिजिटल फास्ट. सो चेंज टुडे, टुडे इज द डे वी से नो टू बीइंग यूज्ड बाय डिवाइसेस एंड यूज द डिवाइसेस only when we need them. The energy and time that we save by not using digital devices, we will put it to better use by improving our mental health, taking up creative activities, pursuing hobbies and spending time with people offline for real.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
यस आकर्षिता, फर्स्ट विल टेक अ लिसनर्स टू शिलोंग. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman's recent four-day visit to Meghalaya concluded with a strong message of inclusive growth and grassroots empowerment. From infrastructure announcements to direct interactions with self-help groups, the visit covered a wide spectrum of developmental priorities for the state. A report.
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman's itinerary in Meghalaya combined policy vision with field engagement. In Shillong, she laid the foundation stone for major capital investment projects, including a plan to revamp Umiam Lake, a world-class MIC center, and football stadium at Makhaon, working women hostel in key urban centers, and the launch of digital libraries aimed at bridging the educational divide. She also launched a CBIC complex to streamline GST operations. At community event across Sora and Lai Khin Sai, Srimati Sitharaman interacted with SSG members and Lakhpati Didis, celebrating women-led entrepreneurship and rural financial inclusion. In a symbolic boost to agriculture export, she flagged off the first international shipment of Meghalaya's pineapple to the UAE, a milestone for One District, One Product initiative. Her visit also included a stop at iconic Living Root Bridge, in showcasing the region's unique ecological heritage and sustainable tourism potential. For Akashvani Samachar, Neeraj Jha from Akashvani Shillong.
स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग में राजस्थान ने काफी सुधार करते हुए राष्ट्रीय पटल पर अपनी छवि को मजबूत किया है. पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट.
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में पहली बार राजस्थान के सभी शहरों की रैंकिंग में पिछले साल की तुलना में सुधार हुआ है. किसी भी शहर की रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले नीचे नहीं हुई है. डूंगरपुर को सुपर स्वच्छता लीग श्रेणी में सम्मानित किया गया है. वहीं जयपुर नगर निगम ग्रेटर को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर के लिए पुरस्कृत किया गया. पहली बार राज्य के तीन नगर निकायों उदयपुर, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज देश के शीर्ष 20 स्वच्छ शहरों में शामिल हो प्रदेश का गौरव बढ़ाया है. राज्य के 12 शहरों ने देश के 100 स्वच्छ शहरों में जगह बनाई है. इसके साथ ही ODF शहरों की संख्या भी 17 से बढ़कर 38 हो गई है. परिक्रमा के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट.
Listeners, now we are heading to Manipur, home to a wide array of festivals that reflects its diverse traditions and communities. Besides these festivals, the state also organized festivals related to its diverse flora and fauna available in the state. The Shirui Lily Festival is organized to celebrate the annual blossoming of Shirui Lily that only grows in the state, while Cherry Blossom Festival is organized in Senapati district of Manipur, where cherry plants grow in large numbers. Another festival, Shingcha Weavan Festival, marking the blooming of Weavan, a rare orchid plant, has been going on at Kamjong these days. We have a report. Listen in.
The Shingcha Weavan Festival is an annual celebration marking the bloom of Weavan, a rare pink orchid ginger grows on the slopes of Mount Wea Kasui in Kamjong district of Manipur. The 3 days annual festival kick off on 17th of this month and held at Shingcha village in Kamjong district of Manipur. This festival has grown into a significant eco-cultural event, bringing locals, officials and tourists, both domestic and international, together. During this 7th edition of Shingcha Weavan Festival, culture and dance, indigenous games and awareness campaign on environment were held. The festival will conclude this evening. In a significant step towards connecting with the people and nature, Governor of Manipur, Ajay Kumar Bhalla, visited Shingcha village in Kamjong district yesterday and attended the district-level 7th Shingcha Weavan Festival. The governor also scaled Mount Wea Kachui, where the Weavan flower blooms. While interacting with media person at the festival site, the governor said that we need to promote the festival as it connects with our surrounding environment. He said,
"We must promote whatever we can. People have suggested that we can make a circuit here using this festival as well as some waterfalls nearby and all, and this can be a good another tourism attraction. So when Shirui Lily happen, after that people can come here."
The 7th Shingcha Weavan Festival beautifully wove nature, legend and community spirit Amid the pink floral tapestry of Mon Huya Kachui, visitors experience more than a seasonal bloom. They witness the promise of sustainable development rooted in respect for culture and biodiversity. As the festival charted its 7 year, it not only celebrated nature's fleeting beauty, but also echoed a collective commitment to preserve Singcha and for all who marvel at its blossoms. J.J. Thokchom, Akashvani News, Parikrama, Imphal.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। फिडे महिला शतरंज विश्व कप में ग्रैंड मास्टर कोनरू हम्पी, डी हरिका, आर वैशाली और अंतर्राष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ भारत ने टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में 4 खिलाड़ियों के साथ पहुंचकर पहला देश बनकर इतिहास रच दिया है। शीर्ष 8 में 4 भारतीय खिलाड़ियों के साथ अब खिताब और शीर्ष 3 स्थानों के लिए भारत और चीन के बीच मुकाबला है। और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
टुडे वी रिमेम्बर मंगल पांडे, हु वाज बोर्न ऑन द 19th जुलाई 1827 इन बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। His courage helped arouse the fire of independence in the hearts of native sepoys. Mangal Pandey was a sepoy of the 34th Native Infantry stationed at Barakpur. In 1857, the Britishers introduced a new Enfield rifle that required a soldier to bite off the ends of greased cartridges in order to load the weapon. A rumor spread that the lubricant used in the cartridges was either cow or pig lard. A belief arose among the sepoys that the British had deliberately used the lard on the cartridges. On March the 29th, 1857, Pandey tried to arouse his fellow sepoys to rise up against their British officer. Mangal Pandey attacked 2 of those officers, attempted to shoot himself after having been restrained, and eventually was overpowered and arrested. Pandey was soon tried and sentenced to death. He was court-martialed and hanged at Barakpur on 8th of April, 1857. After 1 month of this incident, on 10th of May 1857, sepoys revolted in Meerut, and that led to the outbreak of the First War of Independence in 1857. On 19th July 1905, partition of Bengal was announced by Viceroy Curzon. At that time, Bengal was the biggest province of British India and included present-day Bangladesh, Bihar and parts of Orissa. The British argued for dividing Bengal for reasons of administrative convenience, but it was closely tied to the interests of British officials and businessmen. The main British motives were to curtail the influence of growing nationalism and to split the Bengali people.
Before the partition was to be effected, the Congress arranged meetings where petitions against the partition were collected and given to British authorities. Large public meetings and demonstrations were organized, and novel methods of mass protest were developed. It was during this time that Krishna Kumar Mitra openly called for the first boycott of foreign goods through his journal Sanjivani.
The British did not listen to popular demand, and on the 19th of October 1905, Bengal was partitioned. People organized mass protests against the partition. Though the British wanted to divide people, people came back stronger, in unison, and the struggle that unfolded came to be known as the Swadeshi movement.
Well, listeners, today we are also remembering the inventor, industrialist and businessman Samuel Colt. Well, he established Colt's Patent Firearms Manufacturing Company, and his manufacturing methods, they were at the forefront of the Industrial Revolution. His use of interchangeable parts helped him become one of the first to make efficient use of the assembly line manufacturing process. His innovative use of art, well, made him the pioneer in advertising, product placement and also mass marketing. So, in the field of business, he stands tall.
छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। आज हिंदी साहित्यकार, शिक्षक और फिल्मों के गीत लेखक गोपाल दास सक्सेना नीरज की पुण्यतिथि है। उन्होंने अपनी मर्म स्पर्शी काव्यानुभूति तथा सरल भाषा से हिंदी कविता को एक नया आयाम दिया है। गीतों के राजकुमार कहे जाने वाले हिंदी के महान गीतकार गोपाल दास नीरज की जीवन यात्रा स्वयं एक गीत के समान रही। स्वर लहरियों के चढ़ाव उतार को अमूल्य शब्दों से सजाने वाले नीरज खुद समय के मोड़ पर खड़े होकर अपनी जिंदगी को देखते हुए कहते हैं कि और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। कवि सम्मेलनों की अपार लोकप्रियता उन्हें माया नगरी की फिल्मी दुनिया तक ले गई। नीरज ने हिंदी फिल्म जगत को एक से बढ़कर एक नगमा दिया। उन्होंने कई फिल्मों में गीत लिखे। आइए सुनते हैं उनकी फिल्मों का ये गीत।
कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई।
फिल्मों में गीत लेखन का सिलसिला मेरा नाम जोकर, शर्मीली और प्रेम पुजारी जैसी अनेक चर्चित फिल्मों में कई वर्षों तक जारी रहा।
जरा देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
Over time, he developed his style and everything, and his music stood on his own, separated from the movies in which they were once embedded, two of which Akarshita made you listen to, and across the decades into the 21st century. Listeners, we were talking about Gopal Das Saxena, poet and author. Well, listeners, today we're also remembering a musician, another musician, Emmett Lynn Rhodes. Multi-instrumentalist and also a singer-songwriter, he began his career in musical ensembles, the Palace Guard, as the group's drummer before joining the merry-go-round as a multi-instrumentalist. Well, he has been called the one-man Beatles due to the style and skill of his strong songwriting, very strong songwriting, and his instrumentation. I have picked up a classic song, Listen In.
I have to say the things I feel. Oh, I have to feel the things I say. You must live till you die. You must fight to survive. You must live till you die. You must feel to be alive. You must live till you die.
आज मलयालम भाषा की प्रसिद्ध कवित्री नालापत बालामणि अम्मा की जयंती है। वे महादेवी वर्मा की समकालीन थी, जो हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक थी। नालापत बालामणि अम्मा की उनकी रचनाएं एक अद्भुत अनुभूति मंडल से परिचय कराती हैं। आधुनिक मलयालम की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण नालापत बालामणि अम्मा को मलयालम साहित्य की दादी कहा जाता है। उन्होंने 500 से अधिक कविताएं लिखी। वे मशहूर लेखिका कमला दास की मां है। मातृत्व से जुड़ी उनकी कविताएं बेहद उम्दा थी, इसलिए उन्हें मातृत्व की कवित्री भी कहा जाता है, नोन एज पोएटिस ऑफ मदरहुड। उन्होंने 15 साल की उम्र में लिखना शुरू किया था, लेकिन 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं गौरैया, कलकत्ते का काला कुटिया, अम्मा मुथासी, मजहूमीट कथा आदि। उन्हें उनके योगदान के लिए 1987 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
Well, listeners, today it's also birthday of Brian May, the songwriter, record producer and a musician. Well, it is interesting to note here, Akarshita, that he has been an astrophysicist as well, a musician being an astrophysicist. He achieved global fame as the lead guitarist and backing vocalist of the rock band Queen. Well, his guitar work and songwriting contributions, they helped Queen become one of the most successful acts in music history. He became as a virtuoso musician, regarded as a virtuoso musician, and was identified with a distinctive sound created through his layered guitar work. I have chosen a very inspiring song, listeners. This is We Are the Champions.
I've had my share of bad
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षता और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।